लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानवीय जीवन की सार्थकता मानव के स्वार्थहीन अच्छे कार्यों में निहित है। वे कार्य जिन्हें हम अपने जरूरतमंद भाई बहनों के लिए करते हैं, इस तरह हमारे अच्छे और भले कार्यों के द्वारा मानव समाज में अच्छाई के बीज बोई जाते और उस बीज से ही कई तरह के अच्छे फल लोगों के जीवन में प्रसारित होते हैं। इस तरह मानवता की भलाई के लिए हमारा अच्छा कार्य करना मानव समाज को बेहतर बनाने की राह में हमारी ओर से एक छोटा लेकिन अति महत्वपूर्ण सहयोग होता है। श्रोताओ, 23वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का आशय हमें अपने जीवन में भलाई के कार्य करने का आह्वान देते हैं। आइए हम सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवंत वचनों को सुनते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि यीशु हमें आज के पाठों के आधार पर किस तरह की प्रेरणा प्रदान करते हैं।
यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।
श्रोताओं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और सुंदर वचन हमें अपने आप से बाहर निकलने हेतु प्रेरित करे, जिससे हम अपने को उन परिस्थितियों में संलग्न कर सकें जहां मानवीय हित हेतु हमारी ओर से एक छोटी सहायता की जरूरत है।
तेरा वचन प्रभु सुंदर मधुर देता है मन को तेरा एहसास, चारों दिशाओं में तेरी वाणी गूंजे छेड़े हर मन के तार। तेरा वचन
नबी इज़ेकियल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ नबी इज़ेकियल को इसराइली प्रजा हेतु एक पहरेदार घोषित करता है। एक पहरेदार का कार्य किसी घराने की देख रेख करने से है, जिससे कि वह घर विपत्तियों से बचा, खुशहाल और संपन्न रहे। हर परिवार अपने में खुशी और शांति में जीवन यापन करने की चाह रखता है, लेकिन इस चाह में मानवता की दुष्टता या बुराई घुन के समान कार्य करती है, जो परिवार या मानव समाज की खुशी को धीरे धीरे खा जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार अशांत हो जाते हैं। परिवारों में अशांति समाज में अशांति उत्पन्न करती और यह मानवता में व्याप्त अमन चैन को भंग कर देती है। अतः नबी इज़ेकियल को ईश्वरीय वाणी इसराइल के घराने को चेतावनी देने को कहती है, जिससे वह अपने दुष्टतापूर्ण या पापमय कार्यों से बाज आए। यदि नबी ऐसा नहीं करते तो वह दुष्टों की मृत्यु के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने नबुवत होने के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया। वहीं वे दुष्ट को उसके कार्यों की चुनौती देते और दुष्ट अपने कार्यों को नहीं छोड़ता और मर जाता है तो नबी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने निष्ठा में अपने दिए गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। श्रोताओ, आज के पहले पाठ में हम मानवीय संबंधों के ताने बाने की अभिव्यक्ति पाते हैं। मानव के रूप में हम सभी सारी सृष्टि से जुड़े हुए हैं, जो हमें सबों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। अपने इस उत्तरदायित्व में हम सबों को बुराई और पाप का परित्याग कर भले कार्यों के निष्पादन हेतु प्रोत्साहित करने को बुलाए गए हैं। मानव समाज से बुराई दूर करने की पहल अपने में कठिन और चुनौतीपूर्ण है। यद्यपि इस चुनौतीपूर्ण कार्य में हम ईश्वरीय प्रेरिताई में सहभागी होते हैं, क्योंकि भले कार्यों के द्वारा हम अपने मानवीय बुलाहट की सार्थकता को सिद्ध करते हुए अपने को ईश्वर के प्रतिरूप बनाते हैं, जो सारी मानवता की भलाई हेतु मानव बनकर दुनिया में आए। श्रोताओ, मानवता की भलाई हेतु हमारा यह बुलावा हमें आज के दूसरे पाठ से संयुक्त करता है, जहां संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में हमें अपने जीवन में भ्रातृत्व प्रेम के ऋण को छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी नहीं होने को कहते हैं। भ्रातृत्व प्रेम का संबंध केवल अपने भाइयों से ही प्रेम करना नहीं है, वरन सारी सृष्टि के हर प्राणी को, हर मानव को प्रेम पूर्ण निगाहों से देखना और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है, जिसे भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुम्बकम कहती है, अर्थात सारी सृष्टि हमारा घर परिवार है। यह हमारा ध्यान धर्म ग्रंथ बाइबल में ईश्वर की आज्ञा, जो संहिता की सभी आज्ञाओं का एक सारांश, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो है, अनुपालन करने का निमंत्रण देता है। श्रोताओ, हम अपने को प्रेम करते हैं, यह इस बात से जाहिर होता है कि हम सभी बातों में अपनी चिंता करते, अपनी सुधी लेते हैं। हम अपने शरीर की देख रेख करते और कभी थोड़ा अस्वस्थ हो जाने पर अपने लिए दवा दारू का इंतजाम करते हैं। शरीर का कोई अंग चोटिल हो जाने पर हम बड़ी हिफाजत के साथ अपने उस अंग की देख रेख करते हैं। हम किसी भी रूप में अपने को दुखित, घायल या पीड़ित अवस्था में नहीं रहने देना चाहते हैं। श्रोताओ, जिस भांति हम अपने को प्रेम करते, उसी भांति हमें अपने पड़ोसी को भी प्रेम करने को कहा जाता है। हमें उनके साथ किसी तरह की बुराई या किसी भी बात में किसी तरह का अन्याय नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करना अपने पड़ोसियों के प्रति हमारे सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति है। श्रोताओ, वहीं पड़ोसी प्रेम की शुरुआत हमारे घरों से होती है, जहां हम अपनों को सच्चे हृदय से प्रेम करना सीखते हैं। हमारे प्रेम के इस स्वरूप को आज का सुसमाचार भ्रातृत्व में प्रेमपूर्ण सुधार स्वरूप प्रस्तुत करता है। अपने सच्चे प्रेम में हम अपने प्रिय जनों की गलती करने पर उनकी बुराई नहीं करते, वरन उन्हें प्रेम से समझाते हैं। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के सामने इसी बात को रखते हैं, जैसे कि हमने सुसमाचार में सुना। वे हमें भ्रातृत्व प्रेम के मर्म को समझाते हैं। अपने भाई की गलतियों के सुधार का प्रयास हमें यही दिखलाता है कि हम मानव समाज में एक दूसरे के साथ संयुक्त हैं। हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना प्रेम में हमारे ईश्वरीय संबंध की सुदृढ़ता को प्रस्तुत करता है। यह हमारे लिए मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का पिता द्वारा इस दुनिया में भेजे जाने के मर्म को स्पष्ट करता है, अर्थात पिता अपने श्रेष्ठ प्राणी को अपने से अलग नहीं रखना चाहते थे। पाप के कारण उत्पन्न अलगाव को उन्होंने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजते हुए भर दिया। बेटे ने अपने को क्रूस में बलिदान करते हुए प्रेम में उत्पन्न हुई खाई को सेतु स्वरूप पाट दिया। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें, वे हमें दूसरों को जानने, समझने और उनकी गलतियों को क्षमा करने हेतु मदद करें, जिससे हम ईश्वरीय प्रेम के राजदूत बन सकें।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है। सिखाता आपस में बुराई न करना तू जीवन में।
रहना सिखाता आपस में बुराई न करना तू जीवन में।
अपनी बड़ाई जो करता नहीं उसका नाम है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया आज कोलकाता की संत मदर तेरेसा की याद करती है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट प्रेषित कर सभी को उदारता के कार्य करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, संत मदर तेरेसा उदारता की एक अथक कार्यकर्ता, हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम भी कृतज्ञ प्रेम से प्रेरित होकर भाषा, संस्कृति, जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना सभी की सेवा कर सकें। और कोलकाता की मदर संत तेरेसा के पर्व दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कारितास के अध्यक्ष कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले ने वाटिकन मीडिया के साथ गरीबों की मां पर एक प्रतिबिंब साझा की कि किस तरह से उनकी उदारता का उदाहरण सर्वव्यापी महामारी का सामना करने में हमारी मदद कर रही है। पूरी तरह से गरीबों के बीच गरीबों की सेवा के लिए समर्पित जीवन, कोलकाता की संत मदर तेरेसा का उदाहरण दुनिया भर के लोगों, विश्वासियों और गैर विश्वासियों को समान रूप से आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा जरूरतमंदों की संत होने का एक मूर्त संकेत यह है कि शनिवार 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु की सालगिरह और उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की घोषणा करते हुए स्पष्ट रूप से जरूरतमंद लोगों के लिए प्यार के एक मॉडल के रूप में संत मदर तेरेसा का उल्लेख किया। 5 सितंबर 1979 में शांति के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गरीबी और संकट को दूर करने के संघर्ष में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। संत मदर तेरेसा प्रत्येक मानव में ईश्वर की छवि को देख पाती थीं। उन्होंने खुद को गरीबों के लिए ईश्वर के प्रेम उपहार का एक साधन बनाया। कार्डिनल तागले ने कहा, संत मदर तेरेसा अंतर्राष्ट्रीय कारितास के संरक्षक संतों में से एक है। संत मदर तेरेसा द्वारा 1950 में स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी धर्म समाज की धर्म बहने दुनिया के कई हिस्सों में गरीबों के बीच अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2020 के दिन संत मदर तेरेसा और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की भावना हमें कोविड-19 महामारी के समय में सबसे जरूरतमंदों की सेवा हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उधर अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने देश में आए तूफान लारा, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगे आग और अन्य आपदाओं से प्रभावित धर्म प्रांतों के लिए विशेष संग्रह का आग्रह किया है, जिससे कि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने देश भर में धर्माध्यक्षों से अनुरोध किया है कि वे देश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या से उत्पन्न मानवीय दीर्घकालिक सुधार और कलीसिया की जरूरतों के लिए एक स्वैच्छिक विशेष संग्रह पर विचार करें। लॉस एंजिल के महाधर्माध्यक्ष जोस एच गोमेस ने गुरुवार को अपने साथी धर्माध्यक्षों को एक पत्र में लिखा, हम उन परिवारों को हमारी प्रार्थना का आश्वासन देते हैं जिन्होंने प्रियजनों, घरों और व्यवसायों को खो दिया है।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को वैटिकन में हम एक साथ दौड़े पहल के प्रतिभागियों से मुलाकात की। हम एक साथ दौड़े पहल का उद्घाटन 20 मई को हुआ, जिसका उद्देश्य बेरगामो के संत पापा जोन 23वें अस्पताल एवं ब्रेशा में पोली एम्बुलेंस फाउंडेशन द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मरीजों की मदद करने वाले डॉक्टरों एवं नर्सों को धन्यवाद तथा समर्थन देना है। संत पापा से मुलाकात करने के लिए उन अस्पतालों के स्टाफ के प्रतिनिधि भी आए थे। संत पापा ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, ईश्वर आपके प्रयासों का इनाम दे। संत पापा ने खिलाड़ियों से कहा, मैं यह जानकर बहुत खुश हुआ कि कुछ खिलाड़ियों ने सीधे मुलाकात की खुशी हेतु अपने घरों के द्वार खोले। उन्होंने कहा, वास्तव में हम एक साथ दौड़े पहल ने लोकप्रिय चैंपियन एवं दिव्यांग चैंपियन को एक साथ लाया तथा मानव एवं खेल प्रतिष्ठा द्वारा एक ही स्तर पर खेल को सम्मान दिया। भ्रातृ खेल द्वारा घावों को चंगा, सेतु का निर्माण और सामाजिक मित्रता स्थापित किया जा सकता है। खासकर यह युवाओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। संत पापा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया कि वे खेल के अपने इस अनुभव को बनाए रखें। उन्होंने उनके कार्यों एवं सभा के लिए धन्यवाद दिया एवं कामना की कि ईश्वर की मदद से हम भाईचारा एवं मानव प्रतिष्ठा के लिए एक साथ दौड़ सकें। संत पापा फ्रांसिस द्वारा लेबनान के लिए शुक्रवार को विश्व प्रार्थना एवं उपवास दिवस के आह्वान के बाद कोविड-19 एवं बेरूत में भारी विस्फोट के कारण आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने भी लेबनान के प्रति सामीप्य और एकात्मकता व्यक्त की। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को आम दर्शन समारोह के दौरान शुक्रवार 4 सितंबर को लेबनान के लिए विश्व प्रार्थना एवं उपवास दिवस घोषित किया था। संत पापा ने यह भी कहा था कि वे वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन को अपने प्रतिनिधि के रूप में लेबनान भेजेंगे कि वे लोगों के बीच उपस्थित हो सकें और उन्हें एकात्मकता एवं आध्यात्मिक सामीप्य प्रदान कर सकें। प्रार्थना दिवस के पूर्व बृहस्पतिवार को कार्डिनल परोलिन ने बेरूत में संत जॉर्ज मेरोनाइट महाकिर्जा घर में लेबनान के धर्माध्यक्षों, विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों और मानवीय संगठन के सदस्यों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए कार्डिनल ने बतलाया कि उनका यह दौरा समस्त विश्व की कातिक कलीसिया की ओर से सामीप्य व्यक्त करने के लिए है। उन्होंने लेबनान के नेताओं को आश्वासन देते हुए कहा, आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने देश के राजनीतिक नेताओं से भी अपील की कि वे शांति और बेहतर भविष्य हेतु युवाओं की क्षमताओं एवं उनकी आकांक्षाओं को बढ़ावा दें, क्योंकि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सम्मान पर आधारित समावेशी नागरिकता के द्वारा ही हम एक साथ मिलकर हर तरह के अधिकारवाद पर विजय पा सकते हैं। उधर फिलीपींस के कातिकों एवं मुसलमानों ने 3 सितंबर को पारावान द्वीप के समुद्र तट के कचरे और प्लास्टिक उठाकर सृष्टि काल मनाया। पारावान अपने समृद्ध वन्य जीवन एवं रेतीली समुद्री तटों के कारण फिलीपींस का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सफाई का कार्य पृथ्वी को पर्यावरण क्षति से बचाने के लिए पोप फ्रांसिस के आह्वान का प्रत्युत्तर देने के पारिस्थितिक प्रयास सृष्टि काल का जवाब था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।